यूएन रेडियो से समाचार परिक्रमा के साथ मैं हूं महबूब खान। 28 अगस्त 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन की सुर्खियां। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत निभा सकता है अहम भूमिका, महासचिव का जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ऊर्जा में निवेश का आह्वान। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से लगभग 26 करोड़ 30 लाख बच्चों को नहीं मिल पाई दूरस्थ शिक्षा की सुविधा। विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाना बहुत जरूरी, 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषेध दिवस पर विशेष वर्चुअल बैठक। भारत में कोविड-19 के दौरान तालाबंदी के दिनों में बिहार में यूनिसेफ की मदद से रोके गए अनेक बाल विवाह। और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है यूएन न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने जोर देकर कहा है कि भारत समेत सभी देशों को प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करके स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुदृढ़ सौर ऊर्जा में निवेश करना होगा। महासचिव ने शुक्रवार को भारत के टाटा ऊर्जा शोध संस्थान टेरी के 19वें दरबारी सेठ स्मारक व्याख्यान में ये बात कही। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने अपने भाषण में कहा कि आज जब हम कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के दोहरे संकट से जूझ रहे हैं, तब इस प्रयास के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण क्षण नहीं हो सकता। विश्व भर में इस महामारी ने व्यवस्था संबंधी वो कमजोरियां और असमानताएं उजागर कर दी हैं जो सतत विकास की बुनियाद के लिए खतरा पैदा करती हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा,
Investments in renewable energy, clean transport and energy efficiency during the recovery from the pandemic could extend electricity access to 270 million people worldwide, fully a third of the people that currently lack it.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि महामारी से उबरने के दौर में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा के कुशलता से उपयोग में निवेश करने से दुनिया भर में 27 करोड़ लोगों को बिजली सुलभ कराई जा सकती है। ये संख्या इस समय बिजली की सुविधा से वंचित विश्व की कुल आबादी की एक तिहाई है। यही निवेश अगले 3 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 90 लाख रोजगार प्रदान करने में मदद कर सकता है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की भूमिका पर कहा कि भारत के पास देश और विदेश को नेतृत्व प्रदान करने की सभी क्षमताएं मौजूद हैं जिसकी परिकल्पना दरबारी सेठ ने की थी। इस दिशा में गरीबी उन्मूलन और सबके लिए ऊर्जा सुलभता मुख्य संचालक हैं और ये दोनों ही भारत की प्रधान प्राथमिकताएं हैं। स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग बढ़ाना ही इन दोनों समस्याओं का समाधान है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की प्रमुख ने दूरस्थ शिक्षा की सीमाओं और उपलब्धता में गहरी असमानताओं को उजागर करती एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से लगभग 46 करोड़ 30 लाख बच्चों को दूरस्थ शिक्षा जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जितनी बड़ी संख्या में बच्चों की शिक्षा महीनों तक पूरी तरह बाधित रही है, वो खुद में एक वैश्विक शिक्षा आपातकाल स्थिति है। आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जब राष्ट्रव्यापी और स्थानीय तालाबंदी अपने चरम पर थे, उस दौरान स्कूल बंद होने से लगभग 1 अरब 50 करोड़ स्कूली बच्चे प्रभावित हुए। ये रिपोर्ट पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए आवास आधारित दूरस्थ शिक्षा तकनीक और उपकरणों की उपलब्धता पर एक विश्व स्तर पर हुए विश्लेषण पर आधारित है। इसमें यह भी पाया गया कि जहां बच्चों के पास आवश्यक सुविधा उपलब्ध भी थी, वहां भी घरों में विरोधी कारकों से दूरस्थ रूप से सीखना मुमकिन नहीं था। यूनिसेफ के अनुसार इन परस्पर विरोधी कारकों में घर का काम करने का दबाव, जबरन मजदूरी करवाना, शिक्षा के लिए सही वातावरण नहीं होना और ऑनलाइन या प्रसारित पाठ्यक्रम के लिए उचित सहयोग की कमी जैसी वजहें शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट में 100 देशों से जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिसमें टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट तक पहुँच और स्कूल बंद होने के दौरान इन मंचों पर वितरित पाठ्यक्रम की उपलब्धता शामिल है। यूनिसेफ ने सरकारों को जवाबी समाधानों में तालाबंदी व अन्य प्रतिबंध कम होने पर स्कूल फिर से सुरक्षित तरीके से खोलने को प्राथमिकता देने और डिजिटल असमानता की खाई को पाटने के लिए तत्काल निवेश करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों की प्रमुख इजुमी नाकामित्सु ने कहा है कि विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाना ही उन जिंदगियों को सम्मानित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है जो परमाणु हथियारों से ही तबाह हुई हैं। निरस्त्रीकरण प्रमुख ने बुधवार को एक वर्चुअल बैठक में ये बात कही जो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित की गई। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की तरफ से बोलते हुए इजुमी नाकामित्सु ने कहा कि इस वर्ष उस घटना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं जब अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और अंततः जापान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से तो आने वाले दशकों में कम से कम 8 देशों ने 2000 से भी ज्यादा परमाणु परीक्षण किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। उन्होंने कहा, अतीत में हुए परमाणु परीक्षणों के पीड़ितों को सम्मान देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही होगा कि भविष्य में परमाणु परीक्षणों को रोक दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस 2010 से हर वर्ष मनाया जाता रहा है। 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान में सेमी प्लांटिस्क स्थल को बंद किए जाने की वर्षगांठ होती है। ये पूर्व सोवियत संघ में सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण स्थल हुआ करता था। 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को अपनाए जाने के बावजूद दुनिया भर में आज भी हजारों परमाणु हथियार भंडारों में तैयार अवस्था में रखे गए हैं। निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्च प्रतिनिधि सुश्री इजुमी नाकामित्सु ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि मौजूदा दौर परमाणु संपन्न देशों के बीच लगातार बढ़ते शत्रुतापूर्ण संबंधों के साए में घिरा हुआ है। महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे के अनुसार कोविड-19 महामारी ने मानवता को बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत को उजागर कर दिया है। इसमें परमाणु मुक्त विश्व को एक प्राथमिकता बनाना भी शामिल है। वैसे तो 184 देशों ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 168 देशों ने इसे अपनी सरकारों से मंजूरी भी दिला दी है, मगर फिर भी ये संधि अभी लागू नहीं हो सकी है। ये संधि तभी लागू हो सकेगी जब इसे इन 8 देशों से मंजूरी मिल जाए। चीन, लोकतांत्रिक जन गणराज्य कोरिया यानी उत्तर कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने एक बार फिर उन सभी देशों से संधि पर और देरी किए बिना हस्ताक्षर करने और मंजूरी देने का आह्वान किया है जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के जोखिमों और फायदों की गहन जानकारी जुटाने के लिए बनाए गए एक यूएन टास्क फोर्स यानी कार्यदल ने कहा है कि इस अर्थव्यवस्था का टिकाऊ विकास पर परिवर्तनशील प्रभाव हो सकता है और ये नागरिकों को करदाता व निवेशक दोनों के रूप में सशक्त बना सकती है। आम जन का धन एक टिकाऊ भविष्य के वित्तीयकरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया का लाभ उठाने के नाम से तैयार की गई ये रिपोर्ट यूएन महासचिव के डिजिटल वित्त पर कार्यदल ने बुधवार को जारी की। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख अखिम स्टाइनर करते हैं और इसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों की हस्तियां भी शामिल हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वर्ष 2018 में इस कार्यदल का गठन तेजी से आगे बढ़ती वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक और डिजिटल वित्तीय क्षेत्रों के लाभ व जोखिम के बारे में जानकारी बेहतर बनाने के लिए किया था। ये पहल 2030 एजेंडा के लिए धन जुटाने के वास्ते यूएन प्रमुख की रणनीति का एक हिस्सा है। इस एजेंडा को इंसानों और पृथ्वी ग्रह के बेहतर भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र का ब्लूप्रिंट माना जाता है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वर्ष 2018 में कहा था कि 2030 एजेंडा की वित्तीय ज़रूरतें प्रतिवर्ष लगभग 5 खरब से 7 खरब डॉलर के बीच अनुमानित हैं। आम जन का धन नामक ये रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से इस अनुमानित लागत के लिए धन जुटाने के साधन मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट की तरफ ज्यादा ध्यान दिए जाने का आह्वान करते हुए कहा है कि इस संकट की जड़ में बैठे कारणों का हल निकाले जाने की जरूरत है। ध्यान रहे कि रोहिंग्या शरणार्थी संकट अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र इस संकट से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। साथ ही ये विश्व संगठन म्यांमार में शांति, मानवाधिकार और एक टिकाऊ विकास वाले भविष्य के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साथ अन्य सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। एंटोनियो गुटेरेश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट के मूलभूत कारणों को और ज्यादा तात्कालिकता के साथ हल किए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक, सम्मानपूर्ण और टिकाऊ वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए। आखिरी जिम्मेदारी तो म्यांमार सरकार की ही है, जिसने राखीन प्रांत पर सलाहकार आयोग की सिफारिशें लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंसानों की तकलीफों को तात्कालिक तौर पर दूर करने के समाधान तलाश करने से भी आगे दीर्घकालीन सुलह सफाई सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही बहुत जरूरी है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट को 25 अगस्त 2020 को 3 वर्ष हो गए, जो कि अल्पसंख्यकों के विस्थापन का ताजा सबसे बड़ा मामला है। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोलाय म्लादेनोव ने कहा है कि इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में हुए समझौते में पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के समीकरण बदलने की क्षमता है। विशेष दूत ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद के साथ अपनी मासिक बैठक में फिलिस्तीनी और इसराइली नेतृत्व से आग्रह किया कि वो अपने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करने के लिए फिर से एक दूसरे की तरफ सुलह सफाई का हाथ बढ़ाएं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष यूएन संयोजक निकोलाय म्लादेनोव ने सुरक्षा परिषद में कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाता है। साथ ही इसराइल द्वारा कब्जा किए हुए फलस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों को छीनने की इसराइल की योजनाओं पर भी विराम लगाता है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि ये समझौता सभी तरफ के नेतृत्व को इजरायली फलस्तीनी संघर्ष का हल निकालने के लिए सार्थक बातचीत में रचनात्मक तरीके से शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। विशेष दूत ने ये भी कहा कि इजरायल द्वारा पश्चिमी तट में कुछ इलाकों को छीनने के इरादों को स्थगित करने की घोषणा से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तात्कालिक खतरा भी फिलहाल खत्म हो गया है। ये तो पक्का है कि इसराइल द्वारा फलस्तीनी इलाकों को छीनने से अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा, साथ ही इससे एक टिकाऊ फलस्तीनी राष्ट्र और दो देशों के रूप में समाधान के लिए बातचीत फिर शुरू करने की संभावनाओं का दरवाजा भी बंद होता है। विशेष दूत ने कहा कि दो राष्ट्रों के रूप में समाधान ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें इसराइल और फलस्तीन पड़ोसी देशों के रूप में साथ साथ रहें और शांति, सुरक्षा व आपसी पहचान को मान्यता दें। केवल इसी समाधान के जरिए एक टिकाऊ शांति स्थापित की जा सकती है। निकोलाय म्लादेनोव ने कहा कि आज फलस्तीनी उद्देश्य के लिए मायूसी दिखाने का समय नहीं है। फलस्तीनी इलाकों को छीनने की इजरायली योजनाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। अलबत्ता सकारात्मक माहौल बनाने वाले इस समझौते की खबर ऐसे समय आई है जब फलस्तीनी क्षेत्र गाजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।
भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ कोविड-19 महामारी से बचने के लिए मार्च में लागू हुई तालाबंदी के दौरान बिहार राज्य में 25 बाल विवाह रोकने में सफल रहा है। ये सभी बाल विवाह चूहे खाने वाले दलित समुदाय, मुसाहर जैसे महादलित समुदायों में होने वाले थे। यूनिसेफ के कार्यकर्ताओं व शिक्षकों की तरफ से मुस्तैदी से समय पर सूचना मिलने की बदौलत ये बाल विवाह रोके जा सके। लगभग सभी मामलों में परिवारों और बाल विवाह की संभावित शिकार लड़कियों को उचित सलाह मशवरा दिया गया व उनके परिजनों से बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए गए, ताकि वे समय से पहले उन लड़कियों की जबरन शादी न करवाएं। संवेदनशीलता के कारण सभी मामलों में दंडात्मक कार्रवाई टाल दी गई। इस पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने भारत के बिहार राज्य में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा अधिकारी गार्गी साहा से बातचीत की।
हाल ही में बिहार में यूनिसेफ ने कुछ बच्चियों का बाल विवाह होने से रोका, इस पूरे प्रकरण के बारे में विस्तार से बताइए।
कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाह के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें यूनिसेफ एवं उनके पार्टनर संस्था द्वारा राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने रोका है। ये जो केसेस हैं, ये कई सारे जिला जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और ज्यादातर देखने को मिला है कि मुसहरी टोला, जो कि एक महादलित टोला है, वहां से इस तरह के बाल विवाह के केसेस आए हैं। महादलित समुदाय में सर्वाधिक गरीबी व अशिक्षा है। इस समुदाय में लोग ज्यादातर भूमिहीन हैं और आजीविका के लिए मजदूरी करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हुए तालाबंदी से इस समुदाय की आजीविका जाती रही है और इस असहाय स्थिति में लोगों ने अपनी बच्चियों का बाल विवाह करने का प्रयास किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, बाल विवाह एक ऐसी सेंसिटिव इशू है जो कि दिख करके जनरली विजिबल नहीं होती है, और खास करके अभी बाढ़ के समय में, क्योंकि बिहार में अभी दोनों तरह की परेशानियां हैं, एक तो महामारी है और दूसरी तरफ अभी बाढ़ भी आया हुआ है। तो ये देखा जाता है कि इस तरह के टाइम में ये छुप करके शादियां होती है, जो शादी मतलब अदरवाइज बहुत बड़े जलसा और बहुत बड़ा प्रोग्राम के तहत लोगों को इनवाइट करके किया जाता है, वो नहीं हो करके छुप छुपा करके होती है। जब ये शादियां होने वाली थी, उससे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहार में एक विकास मित्र करके एक पद है, तो कुछ भी चीजें अगर होती है तो उन लोगों को कई बार पहले से पता चल जाता है। साथ ही में चाइल्ड हेल्पलाइन भी है, वहाँ पे हमारे कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ग्रुप्स भी हैं इन विकास मित्र दीदी भैया के अलावा। तो इन लोगों के कान तक जब ये बात कम्युनिटी की पहुंची, तो इन्होंने डायरेक्टली फिर SDO को कांटेक्ट किया, चाइल्डलाइन को कांटेक्ट किया, और इन लोगों ने साथ में मिल करके एज ए टीम ये लोग गए जाकर के उनको समझाया कि इनकी ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, और उनको ये भी समझाया कि अभी बच्ची का शादी नहीं करके अगर आप 18 के बाद या 20-21 के बाद करते हैं तो उसकी जो भी पढ़ाई भी पूरी हो सकती है, और साथ ही उसको जो भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम का जो भी एडवांटेजेस, वो भी उसको इजीली मिल सकता है। ये करने के बाद भी उन परिवारों से बॉन्ड साइन करवाया गया, क्योंकि कई बार देखा गया है इससे पहले भी कि सामने कई बार कई परिवार मना कर देते हैं कि ठीक है अभी हम नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे कि जिला प्रशासन के लोग चले गए या फिर हमारे वॉलंटियर्स या युवा वॉलंटियर्स या विकास मित्र लोग चले गए, तो पीछे से वो लोग दूसरे गांव में या कहीं और ले जा करके बच्ची का शादी कर देते थे। तो इस वजह से उनसे, उन परिवार से पंचायत के सामने एक बॉन्ड भी साइन कराया गया। एक शादी में एक टीचर को भी पता चला, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के टीचर्स भी बहुत क्लोज होते हैं बच्चों से, कि टीचर्स के साथ भी हम लोग एज यूनिसेफ बहुत क्लोजली काम करते हैं, उनकी क्षमता वर्धन भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लगातार चलती है। तो उन्होंने फिर जिला प्रशासन को और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उन लोगों को बताई, और वो लोग फिर एज अ टीम जा करके, और सिमिलर प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हुआ जहाँ पे फैमिली को समझाया गया और भी कम्युनिटीज में लोगों के सामने।
आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा अधिकारी गार्गी साहा के साथ संक्षिप्त बातचीत। इस बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 से एक बार संक्रमित होने के बाद दोबारा भी उसके संक्रमण का शिकार होने की बहुत कम संभावना है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की ये ताज़ा जानकारी उन खबरों के संदर्भ में आई है जिनमें कहा गया था कि हांगकांग में एक व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण होने के 4 महीने बाद फिर से संक्रमण हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने मंगलवार को जिनेवा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ध्यान देने की अहम बात यह है कि दोबारा संक्रमण होने की संख्या बहुत बहुत ही कम है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने गुरुवार को घोषणा की कि स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति बनाई जाएगी जो स्वास्थ्य आपदाओं का मुकाबला करने और तैयारियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करेगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। वैश्विक समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य आइए, news.un.org/hi। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।